अब हिकमतें तीनों इकट्ठी बता दी। अमस सफी न तुफका न तली मसाकी न या मलू न फिल बहरी। जहाँ तक उस कश्ती का मामला है तो वो गरीब लोगों की मलकियत थी जो मेहनत करते थे दरिया में। फारत तो नई बहा, बस मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूँ। ये जो लफ्ज़ है ना, अरद तू, इरादे से अरादा यारी दू, लेकिन लफ्ज़ इसमें रूट है रा वाल रौद, पलट पलट कर आना। हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं ना, उसके पहले बहुत सोचते हैं, यूं करूं नहीं करूं, ओके दिस दैट, वो जो माइंड में चल रही होती है ना एक सर्कुलेशन, उसको इरादा कहते हैं। इसके आगे फिर अज़म होता है और डिक्लेरेशन और सब कुछ। बहरहाल मैंने इरादा किया। अन आईबहा, ये जो आईबहा है ना, ये वही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में आप ऐब कहते हैं, ऐबदार करना, ठीक है, किसी चीज़ का नक्स उसमें डाल देना। वकान वरा अहम मलिकुन, और था उनके पीछे बादशाह। क्या करता था, या खुजुकुल्ल सफीनतिन गस्बा, ले लेता था हर कश्ती को ज़बरदस्ती। या खुजू क्या है, अखज़ या खिजू से, कुल्ला हर, सफीना कश्ती को, सुफन से है, इसकी जमा सुफन होती है, कश्तियाँ, बादबानी कश्ती, यानी कश्तियों के कई नाम कुरान में आप पढ़ते हैं, जारिया, और इसी तरह से यहाँ सफीना आ गया, फुल्क आता है, ठीक है। तो यहाँ मुराद है कि वो ख़ास कश्ती थी जो गस्वा का लफ्ज़ उर्दू में सुने, फलां का माल गस्ब कर लिया, ठीक है, बादशाह ज़बरदस्ती किसी की कश्ती को हथिया लेता था। अच्छा, यहाँ से लफ्ज़ थोड़ा सा देखिएगा, मस्कीन। अम्मा सफीना तो फकानत, कानत में ता क्या है, तानीस की, मुअन्नस की है, सफीना की वजह से काना यकून होता है, ता लग गया तो कानत हो गया। मस्कीन की यहाँ डेफिनेशन भी मिल गई। मस्कीन वो नहीं होता कि जिसके पास कुछ ना हो, वो होता है फकीर, फकर, जिसकी कमर के मोहरे तोड़ दिए वो भूख ने, गुर्बत ने। मस्कीन कहते हैं कि वो शख्स जिसके पास कुछ एसेट्स हों लेकिन उनके खर्चे नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। यानी यहाँ मिसाल लीजिए कि कश्ती को आप गाड़ी कर लीजिए, कश्ती को गाड़ी करने को आप देख लीजिए कि गाड़ी है, पेट्रोल के पैसे नहीं है, उसको ठीक करने के पैसे नहीं है, एक्सीडेंट हो गया तो मरम्मत नहीं कर सकते। सूरत तौबा में हमने सदकात के मसारिफ में लफ्ज़ मिस्कीन भी पढ़ा था, तो यहाँ से आपको किसको ज़कात का माल दिया जा सकता है ये भी पता चल गया कि वो मिस्कीन थे, लेकिन कश्ती उनकी अपनी थी। खैर, अब उन्होंने कहा कि इस कश्ती को मैंने ऐबदार कर दिया। अब आप देखिए कि बज़ाहर कश्ती का ऐबदार होना एक नुकसान था ना, उन लड़कों को नहीं पता था कि ये हमारे लिए नुकसान कितने बड़े फ़ायदे का ज़रिया बनेगा। कश्ती चमकती दमकती रहे और अगले ही किनारे पे बादशाह उसको कब्ज़े में ले जाए। हो सकता है वो बादशाह अपने बहरी बेड़े बना बना के भेजता था, क्या करता था उन कश्तियों से। लेकिन दूसरी तरफ है कि उसका ज़ाहरी हुसन कम हो गया लेकिन चलती रही, कौन सी बेहतर है। चलिए आप अपने आज के हालात पे लीजिए, वो गाड़ी वक्त हालात के मुताबिक ज़रूरत पूरी करती है। आप किसी भी ऐसे मुल्क का सोचिए जहाँ बहुत ख़तरे हैं, फितने, चोरियाँ, डाके, रात जाते गन पॉइंट्स पे गाड़ियाँ ले लेते हैं, आप उस मुल्क को सोच लें। नॉर्मल सी गाड़ी कोई अच्छी चलती हुई, इंजन स्ट्रांग है लेकिन ज़ाहरी कोई इतनी पंपी एंड ग्लैमरी नहीं है, वो गाड़ी बेहतर है या ब्रांड न्यू गाड़ी जो आपने 10 लाख 20 25 50 लाख की निकलवाई और अगली मोड़ पे आपको किसी ने गन पॉइंट पे छीन लिया। ऐसे हालात आ जाते हैं बस दफ़ा लोगों के पास कि उनको इस तरह की सारी चीज़ों को पीछे डाल के सिर्फ ज़रूरत की चीज़ पे आ जाना चाहिए। जहाँ पंप एंड शो और ग्लैमर और ज़्यादा दिखावा होता है ना, तो वहाँ इस किस्म की चीज़ें आती है और नज़र भी लग जाती है। पूरा मुल्क भूख में मर रहा है, चारों तरफ हालात ख़राब हैं और आप अपने पोर्च से एक ऐसी चमकती हुई गाड़ी निकालते हैं, कईयों का दिल भी तो कट जाता होगा ना। तो यहाँ एक इशारा मिलता है कि नेमतों का एक्सपोजर नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ ले लें जो आपके फ़ायदे की है, ज़ाहरी शक्ल सूरत जैसी भी उसको रहने दें। इसलिए बच्चों को ज़ाहर सजा संवार के दूसरों को दिखाना इससे बहुत बेहतर है कि अगर बच्चा बहुत खूबसूरत है तो उसको मामूली कपड़े पहनाइए ताकि दूसरों की नज़रों में बहुत ना आ जाए। खैर, दूसरा वाक्य आयत 80, वमल गुलाम फकान अबवाहु मोमिनैन, रहा वो लड़का तो इसके वालदैन दोनों मोमिन थे। फिर क्या हुआ, फहशी नई युरहिकहुमा, हमें खदशा हुआ कि वो सरकशी करेगा, यानी ये बच्चा कुफर पे होगा या माँ बाप के लिए बदतमीज़ होगा। तुग्यानम व कुफरा। तो बजाहर वो नेक माँ बाप का बच्चा था, लेकिन उस बच्चे के नसीब में कुफर था अगर वो बड़ा रहता। और जाहिर है कि ईमान वाले के घर में कुफर वाला बच्चा पैदा हो गया तो खैर तो नहीं आएगी। एक तो वो माँ बाप को दुख देगा, दूसरा आप देखिए कि उस बच्चे को भी तो फिर कुफर पे मरने के ऊपर अजाब होगा ना। और अगर बचपन में लड़कपन में मर गया तो अल्लाह ताला हो सकता है बुलूगत से पहले मरने की वजह से उसको जन्नत दे दे। समझ रहे ना, वाकयात की हिकमत पता चल रही है कि बस इस लड़के को हमने इस तरह से मरवा दिया, ये अल्लाह का हुक्म था। अच्छा, अब यहाँ लफ्ज देखिए, व अमल वला फका नबा मोमिन। मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि माँ यानी अरबी में से कह लीजिए वालिद और अबुन, इसका फर्क ढूंढ के लाइए। क्या फर्क है? कहीं आप अब कहते हैं और कहीं वालिद कहते हैं, और कहीं वालिदा कहते हैं और कहीं कहते हैं। कुरान में ये दोनों लफ्ज आए हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने जो जो लफ्ज इस्तेमाल किए ना, उसके पीछे हिकमत है। ठीक है, बस इतना सा लिख लें कि जो वालिद है ना, जरूरी नहीं कि वो अब भी हो, लेकिन जो अब है वो जरूर वालिद होगा। और इसी तरह माँ के साथ भी है। बहरहाल आगे चलते हैं, बच्चे को मरवा दिया, खत्म हो गई बात। फरत ना युबदिलहुमा रब्बुहुमा खैरा मिन्हु ज़कातम व अक्रबरुमा। बस हमने चाहा कि इन दोनों को बदले में दे इनका रब इससे बेहतर औलाद पाकीजगी में और करीब तर शफकत में। यानी अल्लाह का इरादा क्या था कि माँ बाप को इस दुख से सदमे से बचा ले और इसके बदले में दे। अब यहां भी देखिए अदब का बेहतरीन शाहकार है ये जुमला, अय्युबिलहुमा रब्बुहुमा खैरा मिन्हु। अल्लाह का इरादा है कि माँ बाप को इस बच्चे से बेहतर दे। ये तो नहीं कहा इसमें कि अल्लाह का इरादा है कि इस बच्चे को मरवा दे, ये बच्चा मर जाए फिर माँ बाप को खैर मिले। बात समझिएगा, यहाँ बदल की बात है, अल्टरनेट की बात है। चले इस पे वो वाक्या ज़हन में रख ले जो पीछे सुना होगा आपने कि उम्मे सुलैम का बच्चा फौत हो गया और शौहर को बताए बगैर उस बच्चे को नहा धुला के सुला दिया, और सारी जरूरतें पूरी करने के बाद अगले दिन बताया कि ये बच्चा फौत हो चुका है, आप इस पे सब्र कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर जब मसला था तो आपने क्या कहा कि अल्लाह ने आज की रात आपके लिए एक और बच्चे का इंतजाम कर दिया और उनको अल्लाह ने बदल दे दिया। जब कोई किसी दुख पे सब्र करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लुफली खैरा मिनहा, तो अल्लाह उसका बेहतर बदल देता है। इससे पता चलता है कि वो माँ बाप जिनका ये बच्चा था, जब उन्होंने अपने बच्चे के मरने की खबर सुनी होगी तो उन्होंने अल्लाह की रजा पे राजी रहने का इंतजाम किया और इन्ना लिल्ला पढ़ा और अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ने हो सकता है दुनिया में उनको उससे अच्छा दे दिया। तो कभी भी किसी का बच्चा दुनिया से जाए या किसी फॉर्म में तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला के पास कुछ फरिश्ते पहुंचते हैं और अल्लाह ताला पूछते हैं कि बताओ मैंने फलां शख्स के प्यारे की जान ले ली, जब उसकी खबर उस तक पहुंची तो उसने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं कि अजीब बंदा है कि उसने ये दुख की खबर सुन के कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा, मैंने उसके प्यारे की जान ले ली तो उसने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो गवाह रहना कि मैंने इसके लिए जन्नत में बैतुल हम्द तामीर करवा दिया। तो ये है युबदिलहुमा रब्बुहुमा, इन्ना लिल्लाह पढ़े। पीछे जो बात चल रही थी ना, हाजा फिराक बैनी व बैनिक, मैं आपको अपने दिल की अंदर की बात बताऊं। बस दफा कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अचानक छोड़ते हैं या उनके साथ कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो मैं कसरत से उसको दुआ को पढ़ती हूँ कि अल्लाह उनका मामला तू जान, मुझे अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लिफली खैरा मिन्हा। और मेरा ईमान की हद तक इस पे ईमान है कि स्टूडेंट्स इतने प्यारे इतने खूबसूरत हैं चारों तरफ इर्द गिर्द कि मुझे लगता है कि ये किसी दुख का बदला अल्लाह ने दिया हुआ है जो किसी के छोड़ने के ऊपर पड़ा। दिल के अंदर लग जाती है ना, सूझ जाती है, कभी आपकी कोई दुआ कबूल होती है तो आपको सूझ जाता है। बस ऐसे ही मुझे कभी सूझता है कि ये इतना अच्छा स्टूडेंट कैसे हो गया। अच्छा, ये अल्लाह ने कोई किसी वक्त इन्ना लिल्लाह और अल्लाह माजिरनी को पढ़ लिया तो वो तो फिर हम पे फायदा ही कर गए ना, हमें खैर देके चले गए। तो याद रखिए कि जो बंदा अल्लाह के हर फैसले को दिल की खुशी से कबूल कर ले, अल्लाह उसको युबदिलहुमा रब्बुहुमा बेहतर बदला देता है। ज़कातम व अक्रबरहुमा, ज़कात के पाकिजगी में, यहां पाकीज़गी से मुराद है पाकीज़गी नफ्स, नफ्स की पाकीज़गी, हेज़गारी, मुरव्वत, दर्दमंदी। और ये तोहफे हैं, मांगिए कि अल्लाह मुझे नफ्स की पाकीज़गी दे, मेरा नफ्स जाए ही ना गंदी चीजों पे, मुझे परहेजगारी दे, इतनी सेफ और सिक्योर हूं मैं, कोई ताल्लुक तोड़ने की कोशिश ही ना करूं। और साथ ही साथ वह अकरब रोहमा, शफकत में करीब। लफ्ज रोहमा पहली दफा आया है, शुरू से हम क्या पढ़ते जा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहम का लफ्ज होता है ना, ये रोहम है, फर्क क्या दोनों में, रहम आम रहम है और रोहम में मोहब्बत की इंतहा, बच्चों से जो शफकत होती है उसका इशारा है। या बच्चे की बात है ना, आप कह लें कि बड़ों पे रहम आता है तो बच्चों पे रोहम आता है, यानी शिद्दत और जज्बाती वाबस्तगी और मोहब्बत का एक अंदाज है। जाहिर है कि बच्चे का फौत होना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इससे बेहतर दिया और फिर उसके बाद जो बच्चा अगला था उसके लिए उनके दिल में और भी ज्यादा मोहब्बत थी। चलिए दूसरी बात भी हो गई, यहाँ दो बातों को इकट्ठा करके थोड़ी सी बात कर दूं क्योंकि अगली बात इससे मुख्तलिफ है। ये दोनों वाकयात हमें एक बात का सबक देते हैं जो हमने सूरह आले इमरान में सीखा था कि अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। उसके बाद क्या था, तूलिजुन नहार फिल लैली व तूलिजुन नहार फिल लैल और तुखरिजुल हय्य मिनल मय्य और तुखरिजुल मय्य मिनल हय्य। इशारा मिल गया उसमें कि अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो बंदे को दुख के बाद सुख देता है, रात के बाद सुबह आती है, और इसी तरह से अल्लाह ताला जो है वो शर में से खैर निकालता है। इसी तरह सूरह बकरा में हमने पढ़ा था, आसान तो हिब्बु शैयन वहुवा खैरुल्लकुम, तुम्हें कोई बात अच्छी लगे लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है अंतकरहु शैयन वहुवा खैरुल्लकुम। सूरत बकरा में भी आया था और सूरत निसा में भी आया था। तो दोनों जगह, पहली जगह जिहाद के मामले में आया था और इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मान लगाने पे, और दूसरी जगह शौहर बीवी के ताल्लुकात में आया था। तो वही बात यहाँ समझ आती है, इन दोनों वाकयात में बच्चे का कत्ल होना और कश्ती का टूटना, इन दोनों के जो साहिब थे उनके लिए एक सबक था और हम सबके लिए भी है। याद रखिए इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जरूरी नहीं कि हमें खैर दिखे तो वो खैर हो और शर दिखे तो शर हो। तो आप और मैं इससे अमल की बात ये ले लें कि जब हम किसी तकलीफ का शिकार हों, जब हमें कोई तकलीफ पहुंचे, तो उसके पीछे क्या है, अगर सब्र करेंगे ना तो उसके पीछे खैर है, और शिकवा करेंगे ना तो उसके पीछे उससे भी बड़ी तकलीफ है। हमारी औकात ये है कि बस मान लें, कोई फैसला गलत हो गया, कोई रिश्ता गलत हो गया, कोई चीज ठीक ना ली, लेके टूट गई, ली थी ठीक ना हुई, बस वो लोग कहते हैं कि हमने तो इस्तखारा करके लिया था, या ये रिश्ता तो हमने इस्तखारा करके किया था, फिर क्यों तलाक हो गई। तो उसका जवाब ले लीजिए, अयुब दिलहुमा रब्बुहुमा में। अभी कहानी पूरी हुई कोई नहीं, आप सोचते हैं आपकी बच्ची को डाइवोर्स हो गई है, कहानी खत्म, आपका इस्तखारा खत्म हो गया, नो। अब इसके बाद अभी कहानी की अगली किस्त चलेगी और इसके बाद अल्लाह की ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आपका इस्तखारा जाके फिट हो जाएगा। मेरा और आपका काम और मेरी और आपकी औकात इतनी है कि अल्लाह के हर फैसले पे कहे रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व बि मुहम्मद नबिय्या अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वाऊज़ु बिल्लाहि मिन हाली अहलि नार, कि अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है लेकिन जहन्नमी होने पे मैं शुक्र नहीं करूंगी, उससे पनाह दे दे। इसके अलावा चूं कर लें, चां कर लें, हाय कर लें, बाय कर लें, तकलीफ आएगी वो आएगी। आराम से बच्चा इंजेक्शन लगवा लेता है तो दर्द कम होती है, रिएक्शनरी हो जाए, बाजू को अकड़ा लें, सख्त कर लें जिसम, तो इंजेक्शन की दर्द ज्यादा होती है। तो मुसीबतें, तकलीफें हादसे सुहाने रूह बन जाती हैं जब हम उसके मुकाबले में अकड़ने लगते हैं, मेरे साथ क्यों, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों, और होना चाहिए आपके साथ क्योंकि आपके अंदर अभी अकड़ है। और अगर आप ढीला छोड़ दें, बंदगी या कना बदो या कना, चल मालिक ठीक है मैं इसी काबिल, तो मैं तो इससे भी काबिल ज्यादा थी कि मुझे इससे भी बड़ी बीमारी आती, इससे भी बड़ी तकलीफ आ रही। आप जितने ढीले छोड़ेंगे ना अपने जिस्म को, आप फील करके देखें, उतनी उस तकलीफ की दर्द कम होगी। ये भी एक दिमाग का खुन्नस होता है कि मैं बहुत बड़ी हूं, मुझे क्यों तकलीफ आई है, आपके अल्लाह तकलीफ छोटी आई है, बड़ी भी तो आ सकती थी ना। तो गोया के इस दो वाक्या से हमने ये सीख लिया कि हर फैसले से खैर को ढूंढिए। अब तीसरे वाक्य में सबक और है, उसका पहले हिकमत समझ लेते हैं। आयत 82, वा मल जिदार फकान अली गुलामैन, और रही वो दीवार तो वो शहर के दो लड़कों की थी, कौन थे? यतीमैन, यतीम थे। गुलाम लफ्ज उर्दू में किस तरह हम बोलते हैं? स्लेव के मानों में। अरबी जुबान में गुलाम का लफ्ज लड़के के लिए आता है। हाजा गुलाम, कहाँ पढ़े? सूरह यूसुफ में, शाबाश। कि किस तरह का ये लड़का है, तो बड़ा अर्ली टीन एज का खूबसूरत सा लड़का जहन में आता है गुलाम में, और जन्नत में भी गिलमान होंगे, पढ़ेंगे आगे जाके आप लोग इंशाल्लाह। तो मुराद है कि दो जवान लड़के थे, यानी बहुत खूबसूरत उम्र के, यतीम थे। यतीम किसको कहते हैं? यतुम से। और यतुम कहते हैं अकेले होने को, लोनली, अकेला, सीप का मोती। कैसे है ये कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो बच्चे अकेले ही हो जाते हैं। फिल मदीना थी शहर में, वकान तहतहु कंजुल्लहुमा, और उसके नीचे खजाना था। उस दौर में लोगों के पास लॉकर्स नहीं थे, बैंक्स में अकाउंट्स नहीं थे, सोना चांदी की शक्ल में रुपए होते थे, कागज़ के नोट भी नहीं थे, तो उसको जमा करके फिर वो छुपा देते थे ज़मीनों में घड़े खोद के। अब होता क्या कि एक वक्त तक दीवार ऊपर खड़ी रहती। माँ बाप नेक थे, दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अपने बच्चों का हिसाब लगा के इतनी गहराई ऐसी जगह पे बनाया कि जहाँ उनका ख्याल था कि जवान होने तक दीवार रहेगी, और उसके बाद जब बच्चे बड़े होंगे दीवार कुदरती तौर पे गिरेगी, नीचे से खजाना निकल जाएगा। क्योंकि वकाना अबू हुमा सालेहन, माँ बाप दोनों नेक थे। अब क्या हुआ, उन्होंने तो ये सोचा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि दीवार वक्त से पहले गिर गई, कमज़ोर हो गई गिरने के। देखे ना, फराद अन कद्दा, गिरी नहीं थी, गिरने के करीब थी। पहले ही गिर जाती तो बस्ती वाले जो इतने कंजूस थे, खाना नहीं खिला रहे, क्या वो उस खजाने को रखते? वो भी लेके चले जाते, तो यतीमों का माल चला जाता। लिहाजा फ़अरादा रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्दहुमा, बस आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंच जाएं। किस वक्त से पहले? खजाने के निकलने से पहले। फिर वह यस तखरीजा कंजहुमा, और निकाल लें अपना खजाना। रहमतम में रब्बी का, ये सब उमूर आपके रब की रहमत की तरफ से हैं। और वमा फालतू हुआ नमरी, मैंने इनको अपनी मर्जी से या अपने राय से नहीं किया। ये खिजर अलैहिस्सलाम का जुमला। अब यहाँ आप देखिए कि ये वाक्या, इसमें क्या अमल है? पीछे तो हमने देख लिया ना, शर में खैर और खैर में शर। यहाँ पता चलता है कि माँ बाप की नेकी बच्चों के काम आती है। नेक माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो अल्लाह उनका ख्याल रखेगा। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यतीम हो गई, इमाम बुखारी यतीम हो गए, और अल्लाह के नबी तो थे ही यतीम, पैदा ही उस हाल में हुए। तो लिहाजा अल्लाह ताला माँ बाप की नेकी का असर नस्लों तक रखता है। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि अल्लाह ताला अपने कामों पे कादिर है। क्या ये मुमकिन नहीं था कि वो दीवार ही ना गिरती, दीवार ही मजबूत रहती? मुमकिन था ना, जो माँ बाप का ख्याल था या जो अंदाज़ा था वो ठीक होता, लेकिन वो नहीं हुआ। अल्लाह ने खिजर से ये नेकी लेनी थी। इसमें एक छोटा सा अमल का नुकता कि बाज़ दफ़ा जो हमारे ख़ानदानों के गरीब लोग, यतीम, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, या जो भी मजबूर लोग हैं, वो हमारे लिए नेकियों का टोकन बन जाते हैं। अल्लाह भी उनके काम कर सकता है, हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्यों नहीं करता? हम करके उसमें अजर पा लें। तो लिहाजा हम सबको क्या बनना चाहिए? द की, वो की बन जाएं कि जो नेकियों के दरवाजे खोले। बी अ की दैट ओपन द डोर ऑफ गुड डीड्स। कोशिश करें, ढूंढा करें, छोटे छोटे काम होते हैं, आपको फ़ायदा होगा उससे इंशाल्लाह जब आप करेंगे। कभी भी छोटी से छोटी नेकी को भी हल्का ना जानें। इस तरह से काम करें कि अल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदा दे। अब रह गया आखिरी जुमला इस आयत का कि रहमत में रब्बी का, या आपके रब की रहमत है, और वमा फालतुहान अमरी, ये मैंने अपने पास से नहीं किया। भाई ये कौन सी रहमत है? यहाँ आप अल्लाह की एक प्यारी सी सुन्नत देखिएगा। कश्ती का टूटना रहमत है? क्या बच्चे का मर जाना रहमत है? और क्या किसी का खाना ना देना रहमत है? लेकिन अल्लाह इन सारी चीजों को रहमत कहता है। कैसे? कि इससे बड़ी मुश्किल आ सकती थी और ये नेमत हमारे लिए वबाल बनती। रहमत जहमत बन जाती है सिर्फ एक नुक्ते के फर्क से। अल्लाह की रहमत कैसे है कि वो बहुत सारी जहमत वाली चीजों को हमारी जिंदगी से निकाल दे। तो लिहाजा कभी मिलने में रहमत होती है, कभी ना मिलने में रहमत होती है। कभी बोलना नेकी है तो कभी ना बोलना नेकी है, कभी चुप रहना नेकी है। तो अल्लाह की रहमतों के बड़े रंग हैं, जैसे कौसो कज़ा होती है ना, पांच रंगी सात रंगी, इस तरह अल्लाह की रहमत के रंग पहचाने। हर बंदे पे आपको मुख्तलिफ किस्म की रहमत दिखेगी। अपनी रहमत ढूंढे, हर कॉम्प्लेक्स से निकलकर, हर मुसीबत से निकलकर अपने आप को अल्लाह की रहमत का मुस्तक बना ले। और उनका ये जुमला कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किए, इसको भी समझ लीजिए कि इससे पता चलता है कि अल्लाह के वो बंदे खिजर जो थे, कोई वली थे, फरिश्ते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम भी उन्होंने किए ना, वो अल्लाह के हुक्म से किए। अच्छा, आप इससे लेकर कहेंगे फिर आज भी कोई वलीउल्लाह हैं और वो लोगों से ये करवाएं वो कराएं और वो उनकी अपनी मर्जी से होता है। तो याद रखिए, नबी जब तक दुनिया में मौजूद थे ना, जैसे हजरत मूसा थे, मोहम्मद सल्लम थे, तो अब ये मूसा नबी थे, लेकिन अगर हिजर अलैहि सलाम का ये वाक्या है ना, तो इसकी अहमियत है। आज इसके बाद, यानी अल्लाह के नबी सल्लम के दुनिया से जाने के बाद, अगर कोई बंदा दुनिया का किसी खित्ते में खड़ा होकर किसी मोजजे का इकरार करे, ख्वाब की बात करे, तो उसको बस ट्रैश कैन में डाल दें। जैसे आपको पता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि अपने बच्चे को ज़िबह कर रहे हैं। तारीख में एक शख्स ऐसा भी गुजरा कि जिसने बिल्कुल यही दावा किया था, अपने बेटे को लेके चल पड़ा, कहा किधर जा रहे हो? कहा इसको ज़िबह करने जा रहा हूँ। क्यों? कहा कि मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ है कि इसको ज़िबह कर दो। तो जो उस वक़्त के उलमा थे और जो उनके हुक्मरान थे, उन्होंने उसको पकड़ा और कैद किया। कहा ये तेरा शैतान है जो तेरे पास आया है, तेरे ख्वाब की क्या हैसियत है? कल मुझे आपको खुदा ना खास्ता को ऐसा ख्वाब आ जाए कि जिसमें हम अपने किसी बच्चे को कत्ल करें, तो क्या कत्ल करेंगे? खत्म। नबूवत के साथ करामतें और नबूवत के साथ मौजजात खत्म हो चुके हैं। तो लिहाजा आज किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी, बस हर मामले में अल्लाह पे राजी रहे। और जालिक तावील मालम तस्ती अलैहि सब्रा, ये है असल हकीकत इन बातों की जिन पर आप सब्र ना कर सके। ये बताइए कि ये आखिर में जुमले की ज़रूरत थी कि मालम तस्तती अलैहि जा सब्रा? हम तो इन वाक़यात को सुनने में मूसा को भूल ही चुके थे, ऐसे ही है ना। लेकिन उस्ताद ने आखिर में ये बात फिर कह दी। ये है वो हकीकत। तावील का लफ्ज़ अव्वल से है, अव्वल दोम जो होता है ना शुरू, तो तावील असल को कहते हैं, किसी चीज़ की असल हकीकत। ठीक है, यानी ये थी वो असल रीजन जिसकी वजह से आप सब्र ना कर सके। ये क्यों कह दिया उस्ताद ने? ताकि जाते जाते शागिर्द को, अब मूसा निकल रहे हैं ना इसके बाद खुदा हाफिज, जैसे भी गए होंगे, अगर ये जुमला उस्ताद ना बोलते, इन किस्सों की हकीकत सुनने के बाद मूसा के दिल में बदगुमानी आ सकती थी कि मेरे उस्ताद ने ये इल्म मुझसे छुपाया। यहां से ये भी पता चलता है कि बाज़ इल्म छुपाने होते हैं, एक वक्त तक, जब वक्त आएगा फिर खोल देंगे। तो मालम तस्ती अलैहि सब्रा कहकर शागिर्द को एहसास दिला दिया कि आपका यहां से जाना ठीक है, ये अब हमारा फैसला कि आप यहां नहीं रह सकते, लेकिन इसके अंदर आपका भी कुछ ना कुछ हिस्सा था। तो ये था सफर मूसा और खिजर का। हकीकत में बहुत ही अनयूजल सा वाक्य, हमने इसमें से हिकमतें भी सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन इल्म के साथ शगफ क्या था उस दौर में, इससे बहुत सारे इल्मी नुक्ते समझ आते हैं। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी में देखें तो बहुत कुछ है। मैंने इस दफ़ा ये सोचा था कि आप साथ ही मेरे माविन बन जाए, चूँकि आप लोग सब यहाँ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वालों के लिए तो बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो दूर रहते हैं उनकी भी हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं, मैं अपनी स्क्रीन से पढ़ूंगी। मैंने एक आध के पेपर जो था उसको सेव किया, तो थोड़ा सा देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने इस हिस्से से क्या सीखा, इन आयतों ने हमें क्या सिखाया है, किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। काफ़ी सारे हैं, लेकिन जितने भी पढ़ सके, जो ना पढ़े वो इंशाल्लाह ताला हम उसको बाद में देख लेंगे। स्टूडेंट्स के नाम लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको कभी नहीं बताया कि ये बात मैंने किससे सीखी। तो इस वक्त आप सब मेरे उस्ताद हैं, इसलिए यही कहूँगी कि ये चीज़ें जो हमने सीखी हैं उसके अंदर से पहली चीज़ क्या है, इन्होंने जो लिखी है मूसा और खिजर के वाक्य से इल्म सीखने के कुछ आदाब जो हम देखेंगे इसमें हमारे सामने हैं। पहला अदब यह है कि इल्म सीखने के लिए सच्ची तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, आने वाले हालात और वाक्यात पर गौर व फिक्र करना है कि माँ खलक तहाजा बातिला। ये बहुत खूबसूरत नुक्ता इन्होंने लिखा है कि अभी हालात आगे आने वाले थे, किया जा रहा है। आलम शहादत और आलम गैब का फ़र्क समझना है, तकदीर पर यकीन रखना है, बार बार मेहनत करनी है, परसिस्टेंट रहना है यानी हिम्मत नहीं हारनी, छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान नहीं होना, दोबारा भी करना पड़े तो करना है, कैरी ऑन वाला रवैया अख्तियार करना है यानी कीप इट, कीप काम, जिसको आप ये कह सकते हैं कि किसी भी काम को करते हुए उसके लिए अपने लिए मामला क्या रखना है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ला नबराहा से ये बात है। फिर उसके बाद अल्लाह के दिए हुए इल्म की कदर करनी है और उलमा का अदब नहायत ज़रूरी है, बेहतरीन अखलाक और हिकमत सीखनी है, उस्तादों से बात करने का अदब सीखना है, उस्तादों के साथ रहकर भी ज़िंदगी में बहुत इल्म सीखना है, फिर पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम तक कैद नहीं रखनी, आजजी अपनानी है, नरमी लानी है, बिला ज़रूरत सवालात नहीं करने, अच्छी उम्मीद रखनी है, सब्र की दुआ करनी है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, इल्म के सफ़र में किसी से भी बदगुमान नहीं होना, ओपन कम्युनिकेशन रखना है, बुराई को देखकर खामोश रहने की बजाय इस्लाह की कोशिश करनी है, ग्रेजुअलिटी लानी है, ला तस्ताजिलू का लफ्ज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं, उजलत नहीं करनी पढ़ने में न पढ़ाने में, दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि शायद दूसरे को इल्म नहीं इसलिए उसने ऐसा किया, अल्लाह की मदद से साबिर बने रहने की उम्मीद रखनी है, नाफरमानी से दूर रहने की भी। फिर एक और पे इसको भी पढ़ लेते हैं। आप देखिए कि एक वाक्य में से इतना कुछ है, हम वक्त तो नहीं जाया कर रहे जी, बताइए, वक्त जाया कभी नहीं होता इल्म के रास्ते में। आप देखिए छोटे छोटे नुक्ते हैं और कितने बारीक नुक्ते हैं, इन्होंने तकरीबन एक ही लेसन में से जो जिनकी मैं भी पढ़ी 30 के करीब इन्होंने सबक लिखे है ना। इल्म हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करना चाहिए, इल्म की शर्त अव्वल कमिटमेंट है, शैतान तो भुलवाने और बहकाने की कोशिश करेगा लेकिन हमने अपनी मंजिल से नज़र कभी नहीं हटानी, अगर भूल भी गए तो फिर भी वापस अपनी मंजिल की तरफ आना है, आजजी दूसरी बड़ी शर्त है इल्म के मैदान की, सब्र तीसरी बड़ी शर्त है, रूल्स को मानना है, ज़्यादा और बेमकसद सवालात नहीं करने। तो गोया कि इल्म हासिल करने के पिलर्स क्या हुए, कमिटमेंट, सब्र, रूल्स को वे करना और आजजी लेकर आना। जी, सूरत काहफ की रोशनी में इल्म हासिल करने के आदाब है, ये किसी ने बना के भेजा है, सब्र, इनकिसारी और आजजी, मुस्तकिल मिजाजी, अनथक मेहनत, अपनी गलती मान लेना, बहुत कसरत से सवाल ना करना, मैनेजमेंट के रूल्स को मानना, उस्ताद के अमल से बदगुमान ना होना और हिकमत मालूम करने की कोशिश ना करना। यानी बाज़ दफ़ा जब बहुत कनिंग हो जाते हैं तो भी खराबियां होती हैं। फिर इसके बाद यह है कि इल्म हासिल करने के आदाब, नबी सल्लम ने फरमाया जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला खैर और भलाई का इरादा करते हैं इसको दीन की खूब समझ अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए इल्म के साथ मशगूल होना नफली और बदनी इबादत से अफजल है, जैसे नफली नमाज पढ़ना, रोज़े रखना वगैरह। इल्म को आम करना है, इसका नफा आम करना है। नफली इबादत का नफा सिर्फ इबादत गुजार तक महदूद है। इल्म से ही इबादत की इसलाह वाबस्ता है। अपने दिल में इल्म का नूर दाखिल नहीं होता जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का महल हो। कल्ब इल्म को कबूल करने की सलाहियत रखता हो तो इस इल्म की बरकत नजर आती है। अल्लाह की रजा की तलब और इस पर अमल करने के लिए इल्म हासिल करना ही मकसद होना चाहिए। फिर ये एक और हैं, डोंट क्वेश्चन योर उस्ताद, फिनिश लिसन टू उस्ताद देन आस्क आंसर्स, फॉलो उस्ताद ऑर्डर, बी हम्बल, नो ईगो, हैव सबर, तालिब इज नीड टू गेन इल्म, फॉलो द मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आस्क दुआ दैट अल्लाह मेक्स इट ईजी फॉर यू टू लर्न एंड गेट द नॉलेज। फिर ये लिखती है, इल्म हासिल करने के आदाब, आजी और इनकसारी, वक्त की पाबंदी, उस्ताद की इज्जत और एहतराम, अखलाक और हुस्न सलूक साथियों के साथ, बहुत ज़्यादा सवालात ना करना, अपनी कमिटमेंट्स को यानी असाइनमेंट्स को वक्त पे करना, क्लास में बिल्कुल फोकस रहना, और क्विक नोट्स पॉइंट्स यानी नोट्स को पॉइंट्स की सूरत में नोट ले करना चाहिए, और क्लास के दौरान खाने पीने से गुरेज करना। ये लिखती है कि सूरत कहफ के अंदर से हमें क्या मिला, ट्रेवलिंग फॉर नॉलेज एंड कीन टू गेट नॉलेज, मुश्किलात को बर्दाश्त करना, शोइंग ह्यूमिलिटी, एक्सरसाइज पेशेंस, यानी तकरीबन वही सारी बातें हैं लेकिन चंद चीज़ें इन्होंने लिखी थी। ये लिखते हैं कि इल्म वो है जो दूसरों को नफ़ा दे, जब तुम इल्म सीखो तो इसके वकार, सुकून और इल्म और बुर्दबारी का असर तुझ पर नजर आना चाहिए। मौलिम को चाहिए कि दुनिया से ज़्यादा ताल्लुक के खातिर न रखें, किताबें पढ़ें, अपनी उम्र के कीमती लम्हात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये तो हमने कहीं से नोट किया है, हा? इतनी मुश्किल उर्दू है, किताबें पढ़ें, इल्म हासिल होने से बुलंदियाँ मिलती हैं, इल्म हासिल करने के लिए सब्र से काम लेना चाहिए, इल्म हासिल करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, जहाँ भी फ़ायदा हो वहाँ से ज़रूर हासिल करें, इल्म हासिल करने से जहन तेज़ होगा, बात करने का तरीका आता है और आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ें थी, इसके साथ और भी एक दो चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं चंद बातें सुनाऊँ उसमें से, कुरूने उला कैसे थे, बहुत दिलचस्पी की हैं, आप मुझे यकीन है कि इंजॉय करेंगे। हमारे कैसे थे कुरूने उला और उनकी कैसे थी ये सारी दर्सगाहें, ऊपर के दो दौर स्किप कर देती हूँ क्योंकि हम जब भी दौरे नबवी और दौरे सहाबा की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी उन जैसा कौन हो सकता है, तो बल्कि ये मैं आपके मुशाहदे के लिए खोल भी देती हूँ, आपको पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं। यानी ताबई जो आप कह लीजिए कि हम जैसे ही लोग थे कि जो नबी सल्लम से दूर थे, मतलब उसका थोड़ा सा इन्होंने लिखा, मैं सारा तो नहीं पढ़ सकती लेकिन इसमें से कमेंट्स एक दो सुन लीजिए। अब्दुल्ला बिन उमर से एक उस्ताद ने कहा, ए इब्ने उमर, अपने दीन की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो, दीन तुम्हारा गोश्त और खून है, देखो कि किस से इल्म दीन हासिल करोगे, इन लोगों से हासिल करो जिनमें दीनी इस्तकामत है और इन लोगों से हासिल ना करो जिनमें टेढ़ापन है। हजरत अली ने कूफा की जामे मस्जिद में ऐलान किया, उन्ज़ुरु अम्मन ताख़ुज़ून हाज़ल इल्मा, क्योंकि फ़इन्नमा हुवद्दीन, तुम लोग देखो कि किससे इस इल्म को लेते हो क्योंकि ये तुम्हारा दीन है। दुनिया आसान बात नहीं है, दुनिया की चीज़ है, चलो कोई बात नहीं है। इसी तरह एक और जो कॉल है इधर, ये इल्मे दीन है, बस देखो कि इसको किससे हासिल करते हो। इब्न अब्बास आखिरी ज़माने में कहा करते थे कि एक ज़माना था जब हम किसी को क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए सुनते थे तो फौरन हमारी नजरें इस पर उठती थी और हम कान धरकर सुनने लगते थे। अब जबकि लोग हर सही गलत को बयान करने लगे तो हम उसी आलिम से इल्म हासिल करते हैं जिसको पहचानते हैं, यानी पिक एंड चूज हो गए। फिर उसके बाद एक बड़ा खूबसूरत कोट था इसमें यंग्स के लिए इल्म की रगबत के बारे में, इसको सुन लीजिए। इमाम मालिक बयान करते हैं कि ये इल्मे दीन भी दीन है, तुम देखो कि किससे हासिल करते हो, और मस्जिद नबी के सतूनों की तरफ इशारा करते, इमेजिन कीजिए। बल्कि इसमें इतनी दिलचस्प थी इमाम मालिक की दरसगाह, मेरा दिल चाहा कि मैं आपको वो भी सुनाऊं लेकिन फिर बहुत लंबा हो जाएगी बात, कि इमाम मालिक का अपना स्कूल कैसा था जिसको आप मदरसा कह सकते हैं। इमाम मालिक बयान करते हैं कि ये इल्मे दीन भी दीन है, तुम देखो कि किससे हासिल करते हो, और मस्जिद नबवी के स्तूनों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मैंने इनके पास 70 अहले इल्म को देखा जिनमें से हर एक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता था, मगर मैंने इनसे कुछ इल्म हासिल नहीं किया, हालांकि इनमें से हर एक अगर बैतुल माल का निगरान बनाया जाता तो अमीन होता, यानी इल्म भी था अमीन भी थे, इसके बावजूद वो हजरात इल्मे हदीस के आदमी नहीं थे। हर आलिम जो हदीस और फतवा के लिए मजलिस कायम करना चाहता था कायम नहीं कर सकता था। यहाँ तक अहले फजल व इस्लाह और मस्जिद नबवी के अहले इल्म से इसके बारे में मशवरा होता था, यानी हर एक को इजाज़त नहीं थी स्कूल या मदरसा खोलने की। अगर ये हजरात इसको अहल समझते तो मस्जिद में बैठता, जब तक 70 अहले इल्म ने मेरी अहलियत की शहादत नहीं दी मैं भी मजलिस में नहीं बैठा। इमाम मालिक कहते 70 आलिमों ने मेरे इल्म की गवाही दी फिर मैं बैठा था इल्म की मसनद पे। अल्लाह अकबर। चलिए इसमें से थोड़ा सा आपको वो हिस्सा सुनाती हूँ जो इल्म के साथ हमारे बच्चों का क्या ताल्लुक था उस दौर में। एक रिवायत में कि मैं कई दिन की मिसाफत तय कर कर आलिम के पास जाता था ताकि इससे हदीस का सिमा करूं, हदीस सुनूं, और इसकी नमाज को मद्देनजर रखता था। अगर देखता कि वो सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है तो इसके यहाँ क्याम करता, और अगर देखता कि नमाज में बेकैफी और बेपरवाही है तो ये कह कर वापस हो जाता कि जब ये शख्स नमाज में गफलत कर रहा है तो दूसरे उमूर में भी तो गैर जिम्मेदार होगा। पहले ज़माने में लोग सनद के बारे में सवाल नहीं करते थे, यहाँ तक कि फितना पैदा हो गया, इसके बाद सनद के बारे में सवाल करने लगे ताकि अहले सुन्नत की हदीस बयान की जाए और अहले बिदत की हदीस को छोड़ दिया जाए। सनद मोमिन के लिए असलहा है, जब उसके पास असलहा नहीं होगा तो अहले बिदत से किस चीज़ से जंग करेगा। ये आपके वो बुखारी के सेशन से रिलेट करती है बात, यानी पहले अथेंटिसिटी है फिर बाकी बातें, कौन कैसे करता है। इल्मी असफार, असफार सफ़र की जमा, के इल्म के लिए सफ़र कैसे था। अहद सहाबा में इल्मी और तालीमी असफार और खिलात का रिवाज आम नहीं था, ना इसकी ज़रूरत थी क्योंकि सारे मक्का मदीना के करीब थे। अहद ताबईन में अहादीस की तहकीक की ज़रूरत पड़ी तो इल्म के लिए सफ़र होने लगे। ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा के फुकहा और मुहद्दिसीन इस सिलसिले में हैसियत रखते हैं, ताबईन इनके पास आकर मुतमईन होते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि अगर कोई फितना बरपा हो और लोग इसके बारे में अहले मदीना की तरफ रुजू करें और वो किसी के फैसले पर मुत्तफिक हो जाएं तो मामला दुरुस्त रहेगा, मगर लोगों का हाल यह है कि जब कोई शख्स कौवे की आवाज़ निकालता है तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, मुराद यह कि तहकीक नहीं करते। तलबे इल्म में हुस्ने नीयत, ये बहुत इसका वो एहतमाम करते थे। हवा परस्तों यानी ख्वाहिश परस्तों और फितना परवरों पर नज़र रखी जाती थी उस दौर में भी, और इस तरह की बातें ना हो कि वो उस्तादों की तरफ गलत बातें मंसूब करें। हसन बसरी ऐसे ख्वाहिश परस्त और दुनियादार लोगों के बारे में बहुत हसास थे। वो कहते हैं कि हमारे इस हल्के में कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ बैठते हैं जिनका मकसद इल्म से सिर्फ तलबे दुनिया होता है। अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम करे जो हमारी तरफ गलत बात की निस्बत करे। नौजवानों में इल्म दीन का ज़ौक, नौखेस्त और नौजवान तलबा नहायत ज़ौक व शौक और हुस्न नीयत से ताबईन की मजलिस में शरीक होते, इनको बड़ी मोहब्बत और शफकत से तालीम देते, इनकी हिम्मत अफजाई करते और इनकी ज़रूरियात पूरी करते। उकबा बिन अबू हकीम हमदानी का बयान है कि हम चंद लड़के यानी अता बिन अबी रबाह की मजलिस में थे, उन्होंने हमसे कहा कि आओ मुझसे हदीस लो, तुम में से जो अच्छी तरह नहीं लिख सकता हम उसके लिए लिख देंगे और जिसके पास कागज़ नहीं होगा हम इसको कागज़ देंगे, सेलफोन नहीं बल्कि बच्चों को कागज़ देंगे। सैयद बिन मुसैब मकतब के बच्चों को देख कर कहते, कितना खूबसूरत जुमला इनका देखेगा, हाउलान नासुबादना, ये हैं बच्चे हमारे बाद के आलिम, यानी हमारे बाद जो बच्चे आलिम बनेंगे। हसन बसरी कहा करते थे नौजवानों को हमारे सामने रखो, कहाँ बिठाओ, फ्रंट रो में बिठाओ, इनके दिल फारिग होते हैं, यानी इनके पास इतने तफक्कुरात नहीं होते। ये अलग बात है कि आज के नौजवानों के तफक्कुरात बड़ों से भी बढ़ जाए। जो सुनते हैं याद कर लेते हैं, इनमें से अल्लाह जिसको चाहेगा इल्मे दीन देगा, क्या पता चला इससे क्या सीखे। जवानी में इल्म सीखने के ज्यादा मौके होते हैं और ज्यादा जल्दी याद होता है। अबू बकर बिन अय्याश की मजलिस से गुजरते हुए एक शख्स ने इनसे पूछा कि ये बच्चे यहाँ क्यों हैं, उन्होंने जवाब दिया अल्लाहुल्लज़ीन यहफ़ज़ून अलैका दीनक, ये लोग तुम्हारे दीन की हिफाजत करेंगे, यानी बच्चों को इल्म की मजलिसों में बिठाओ ताकि कल इन्होंने तो दीन आगे पेश करना है। और दीन के साथ शौक कितना था, इमाम रबी मदीना के अजवाद और असखिया में थे, यानी सखी भी थे और जवाद यानी बहुत खर्च करते थे, उन्होंने अपने असहाब और अखवान पर 40,000 दिरहम खर्च किए। मशहूर मुहद्दिस अब्दुल वहाद बिन अब्दुल मजीद की सालाना आमदनी 40,000 थी, कमा सकते हैं, ये अगले सबक में अब लेसन आ रहा है, लेकिन वो तमाम रकम साहिब हदीस पर खर्च करते थे। इस्माइल बिन अय्याश के बारे में अबू खाजी याहिया का बयान है कि मैंने इनसे बड़ा आदमी किसी को नहीं देखा। जब हम लोग इनके पास जाते थे तो हमको बिजगाला और हलवा पेश करते थे, यानी इल्म के लिए जाते थे उनको अच्छा सा खाना खिलाते थे। अब्दुलरहमान बिन अबू लैला के मकान में जब कुर्रा जमा होते और बगैर खाना खाए वो उनको नहीं लौटने देते थे। वलीद बिन अब्दुल मलक ने अहले इल्म फजल और तुलबा और मौलमीन के लिए वजीफे जारी किए। इब्ने अबू एला का बयान है कि खलीफा वलीद मुझको चांदी के टुकड़े दिया करता था जिनको मैं बैतुल मुकद्दस की मस्जिद के कुर्रा और तुलबा को तकसीम करता था। यानी लेने वालों के भी दिल ऐसे थे तो देने वाले भी ऐसे ही थे। ये कि आज फिर मुसलमान सी दौर में आ जाएं, यहाँ पे सबक पूरा हुआ।